ओम शांति। भट्टी का आज मध्य का वो दिवस जो हमें साधना की तीव्रता और अपनी स्वयं की पहचान की गहनता का अनुभव कराता है। आज विशेष हमारे बीच डॉक्टर सविता बेन पधारे हैं। नासिक के इस संगठन में सविता दीदी आपका हम दिल से स्वागत करते हैं। विषय भी इतना अच्छा है, शांति की शक्ति एक शस्त्र, जिनका व्यक्तित्व भी शांति के अनुभूति से भरा हुआ है। आपने बाल्यकाल में ही आज से 51 वर्ष पहले बाबा को समझा, बाबा को पाया। 89 से आपने अपना जीवन सेवा में समर्पित किया है। जीवन की समर्पित जीवन की शुरुआत में उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा वगैरह स्थानों पर आपने अपनी सेवाएं दी। 89 से 8-10 साल तक अपनी ग्लोबल हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर भी अपनी सेवाएं दी। लेकिन आपका व्यक्तित्व की खूबी रही कि हमारी दादी प्रकाशमणि जी के अंग संग रहने का आपको भी एक हेल्थ केयर के नाते बहुत बड़ा चांस ड्रामा ने दिया हुआ है। वर्तमान समय आप महिला प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। इससे भी ऊपर यूनाइटेड नेशन और यूएसए में भी आपने जाकर अपनी सेवाएं दी है। विश्व के 15 से भी ज्यादा देशों में जाकर आपने सेवाएं दी है। अमेरिका की एक महिला संस्था ने आपको वुमन ऑफ एक्सलेंस का भी अवार्ड दिया है। एक ऐसी प्रतिभा जो शांतचित, नम्रचित और सरलता की धनी है। आज आप हमारे संगठन में पधारे हैं, तो चलो हम सब एक साथ अपने मन को तैयार करें। जो बातें ये निमित्त आत्मा के मुख से शांति की शक्ति के लिए हमारे प्रति निकले, वो मेरे को अपने लिए पर्सनलाइज बनाना है, वो मेरे लिए हैं और मेरे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए हैं। तो अभी क्लास भी कराएंगी और आप योग भी कराएंगी, तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। परम आदरणीय सविता दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीन बार ओम शांति बोला तो किसकी याद आई? तो ये तीन बार ओम शांति में हमारा शांति का मंत्र छुपा हुआ है। तो पहला ओम शांति माना मैं कौन। दादी बताती थी मैं कौन, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। और दूसरा ओम शांति माना मेरा कौन, शिव बाबा शांति का सागर, वो मेरा बाबा है। और फिर मुझे क्या करना है, ओम शांति तीसरा माना मुझे क्या करना है, तो मुझे विश्व को शांति का दान, शांति दूत बनकर विश्व को शांति देनी है। तो बाबा ने तो हमें शांति की बहुत सहज परिभाषा बताई है। हम सिर्फ शांति को अपने से एक संकल्प की दूरी पर अनुभव करते हैं, अपने स्वरूप में स्थित हुए और शांति का अनुभव किया। दुनिया में तो लोग शांति के लिए आज क्या क्या प्रयास करते हैं ना, कितनी अशांति है दुनिया में। मतलब भले ही उनके पास सब कुछ है, सब साधन है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन क्या कहते हैं, भगवान का दिया सब कुछ है, बस जीवन में क्या नहीं है, शांति ही नहीं है, तो फिर शांति के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? गुरु के पास जाते हैं या पहाड़ों पर घूमने जाते हैं या सागर के किनारे जाते हैं? हॉलीडेज पर क्यों जाते हैं? हाँ, थोड़ा अपने रूटीन से अलग हो जाएंगे तो हमें शांति मिलेगी। ये जो भाग दौड़ की जिंदगी है, जो जीवन की समस्याएं हैं, इससे हम थोड़ा दूर हो जाएं, तो वो स्थूल रूप में उसे ढूंढते हैं, तो शांति तो मिल नहीं सकती, क्योंकि शांति तो मन की स्थिति है। एक बार ऐसे ही एक राजा के एक गुरु के पास गया, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, राज्य कारोबार ऐसा है कि रात को नींद भी नहीं आती मुझे, इतनी अशांति है। अशांति होती है तो व्यक्ति को नींद भी नहीं आती रात को, तो फिर कोई उपाय बताओ जिससे मेरा मन शांत हो जाए। तो गुरु ने कहा ठीक है बताऊंगा, लेकिन सवेरे आना मेरे पास। कितने बजे? सुबह 4 बजे आना। तो उसको उसको लगा सुबह 4 बजे बुला रहे हैं मेरे को, अभी क्यों नहीं बता सकते। तो उसने ठीक है अब जो कहा गुरु ने मानना है। तो आया सुबह 4 बजे और फिर उसने ये भी कहा कि मन को भी साथ लेकर आना। तो वो सोचने लगा कि मन तो आएगा ही ना साथ, मैं आऊंगा तो मेरा मन भी तो साथ आएगा, मन थोड़ी मेरे से अलग है। खैर जो भी था वो पहुंचा सवेरे। तो एक तो हम सब जानते हैं कि अमृत वेले का समय कैसा होता है, शांति का ही समय होता है, तो न चाहते हुए भी मन सहज शांति की स्थिति का अनुभव करता है। तो एक तो वो समय और दूसरा उसने कहा कि तुम बैठो सामने और अपने मन को ढूंढो, मन क्या कर रहा है, मन कहाँ है और क्या कर रहा है। तो उसको लगा ये गुरु बड़े अजीब अजीब सवाल करते हैं। अब कहाँ ढूंढूं मैं मन को, मुझे तो पता ही नहीं मन, अज्ञानी लोगों को थोड़ी पता है मन कहाँ है, हमें तो पता है कि मन आत्मा में है, मन आत्मा की शक्ति है। तो सोचा मन कहाँ है, कहाँ ढूंढूं, पर अब कहाँ है तो ढूंढना है कहाँ है मन और क्या कर रहा है। तो सारी बुद्धि उसकी किस में लग गई, मन को ढूंढने में। तो मन ढूंढ रहा है तो मन और विचारों से सारा निकल कर कहाँ आ गया, देखने में, अपने आप को देखना शुरू कर दिया ना, क्योंकि भीतर गया, क्योंकि मन कहाँ है, बाहर तो है नहीं भीतर है। और जब वो कुछ समय ऐसा कर रहा था तो उसको शांति का अनुभव हुआ। तो कहने का भाव क्या है, अपने आप को देखते ही, यानी जब हम अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं, स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं, या अपने विचारों को हम देखते हैं, जैसे बच्चे को भी ना, बच्चा कुछ कर रहा है और उसको आप देखना शुरू कर दो तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्शियस हो जाएगा, मुझे कोई देख रहा है, तो वो बहुत सावधान हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा मन भी फिर शांत होने लग जाता है। तो बाबा ने हमें वो विधि पहले ही सिखा दी, तो हम तो अपनी शांति को स्वतः ही अनुभव कर लेते हैं। हमारे लिए वो ऐसे नहीं है जैसे कहा कि कस्तूरी जो है वो मृग की नाभि में ही है, लेकिन वो उसे ढूंढता है पूरे जंगल में कहां से खुशबू आ रही है। तो वो तो हमारी स्वयं के मन की स्थिति, आत्मा के स्वरूप में ही हमें शांति का अनुभव होता है। लेकिन फिर भी हम भी कभी कभी अशांत हो जाते हैं, क्योंकि अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो अशांत होते हैं, नहीं होते हैं, या पूरी तरह से शांत स्वरूप की स्थिति बन गई है, कुछ भी हो जाए। अब बहुत बातें आती हैं जिंदगी में जो हमें अशांत करने वाली हैं। सबसे पहले तो गुस्सा आता है। सबसे बड़ी अशांति कहाँ पैदा होती है, किसी भी बात को लेकर के किसी के ऊपर हमें गुस्सा आ गया तो पूरी मन की शांति खत्म। या फिर किसी बात को लेकर हम टेंशन में आ गए, कोई बात की हमने चिंता करना शुरू कर दिया, या कोई भी बात में हम प्रश्नों में चले गए, व्यर्थ संकल्पों में, जिसको बाबा कहता है वेस्ट थॉट्स में चले गए, तो हमने क्या कर लिया, अपने मन को अशांत कर लिया। तो वो परिस्थिति में भी मन में अशांति ना हो, ये शक्ति है। शांति की शक्ति क्या है, जिन स्थितियों में दुनिया वाले भी शांत रह सकते हैं उसमें हम भी शांत रहते हैं, तो कोई महानता नहीं है या कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। लेकिन अशांति की स्थिति में भी हम शांत रह सकें, और न सिर्फ हम शांत रह सकें लेकिन दूसरों को भी शांति का अनुभव करा सकें या उन्हें भी शांत कर सकें, इसको हम ज्ञान की शक्ति कहेंगे या योग की शक्ति कहेंगे। तो नॉर्मली सिंपल सी बातों में ही हम अशांत हो जाते हैं, किसी ने मेरी बात नहीं मानी या किसी ने कोई गलती कर ली या जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं कर रहे हैं या मानो कोई हमें अपमानित कर देता है, कोई ऐसा व्यवहार कर देता है हमारे साथ जो हमें थोड़ा दुख हो जाता है उस बात को लेकर के। चलो हमने गुस्सा नहीं किया, ब्राह्मण हैं हम तो गुस्से से तो थोड़ा हम सोचते हैं शांत रह जाओ चुप रह जाओ, कहना ठीक नहीं है। लेकिन मन क्या हो जाता है, मन उस बात की फीलिंग में इतना आ जाता है कि एक दिन तो क्या, कितने दिनों तक हमारा मन अशांत, हमारा योग भी नहीं लगता है बाबा के साथ। या मानो कोई पर हम बहुत विश्वास करते हैं उससे हमको धोखा मिल गया, माना ये जो कारण बनते हैं, आप ट्रैफिक में जा रहे हैं आपको टाइम पर पहुंचना है फंस गए, हाँ तो भी अशांत हो जाते हैं। घर में काम करने वाली मेड है वो ही नहीं आई आज, अब सारा काम मेरे को ही करना पड़ेगा, क्या होता है। तो ये बातें कई बार छोटी छोटी भी मेरे मन को अशांत कर देती हैं। तो अगर ये बातों में भी हम अशांत होते रहेंगे तो हम शांति के वाइब्रेशंस या शांति का वायुमंडल नहीं बना सकते, कभी शांत कभी अशांत, ये स्थिति हो गई ना। जब योग में बैठे हैं, जब ज्ञान सुन रहे हैं तब तो शांति है, अब योग में बैठे अभी सब इतना अच्छा पावरफुल वातावरण था, जैसे ही हम आए तो आप एक घंटे से योग कर रहे ना यहाँ पर, तो फील होता था कि हाँ बहुत पावरफुल वातावरण है हॉल का, और निश्चित है कि कोई भी आएगा तो वो एकदम उसको शांति का अनुभव होगा। तो ऐसे समय में तो हम शांत हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो फिर कैसे परिवर्तन लाएं, जब मन में व्यर्थ और नेगेटिव चलने लग जाता है तो क्या परिवर्तन लाएं जो तुरंत मन शांत हो जाए। क्योंकि परिवर्तन की शक्ति का प्रयोग किए बिना, जैसे बाबा कहता है कि साइंस की पावर और साइलेंस की पावर, अगर हम साइलेंस पावर की बात करते हैं तो आज साइंस भी साइलेंस से निकला है ना, लेकिन साइंस की स्पीड कितनी फास्ट है, एक स्विच ऑन ऑफ करने की देर है, आपने स्विच ऑन किया और अंधकार खत्म, आपने स्विच ऑन किया और गर्मी खत्म, गर्मी है पंखा चला दिया तो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया ना, या ज्यादा गर्मी है तो एसी चला ली तो क्या हो गया, ठंडक हो गई। तो किस स्पीड कितनी तेज है, एक सेकंड में परिवर्तन कर देती है जो साइंस की शक्ति है। तो क्या साइलेंस की शक्ति ये परिवर्तन नहीं कर सकती कि एक सेकंड में मेरा थॉट चेंज हो जाए, कोई भी अशांति पैदा करने वाले विचार जो मेरे मन में चल रहे हैं उनको हम ज्ञान की शक्ति से योग की शक्ति से फुल स्टॉप कर सकें। तो बाबा हमें कहते हैं कि फुल स्टॉप लगाने के तीन तरीके हैं। अब कोई भी बात हो रही है, मानो कोई भी परिस्थिति पैदा हो रही है, चाहे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है चाहे प्रकृति के द्वारा हो रहा है या ऐसी ही कोई अनहोनी जो हमारे हिसाब किताब होते हैं अचानक घट जाती है जीवन में, तो बाबा ने हमें तीनों कालों का ज्ञान दिया है, तीनों कालों की समझ दी है कि ये क्यों हो रहा है, मालूम है ना उसका राज हमें पता है कि ये जो भी सीन सीनरी मेरे सामने आ रहे हैं, हाँ ये ड्रामा का पार्ट है या ड्रामा का हिस्सा है और ये क्यों हो रहा है। तो पहली बात, जैसे ही हम राज समझते हैं हमें आंसर मिलता है और फुल स्टॉप लग जाता है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ऐसा क्यों हुआ। फिर दूसरी बात बाबा कहता है, इसमें ही हमारा कल्याण है। जो भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है जीवन में, उसमें भी हमारा भला है, क्योंकि संगम युग कल्याणकारी युग है। हमारा बुरा हो ही नहीं सकता संगम युग पर, तो ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि जीवन में घटनाएं तो बुरी भी होती हैं। हाँ, ऐसे संकल्प भी चल सकते हैं, मेरा ही भाग्य ऐसा है, मेरा ही ड्रामा ऐसा है, क्या मुझे ही ये विघ्न आने हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये संकल्प तो चल सकते हैं ना हमारे, क्योंकि उतार चढ़ाव तो जिंदगी में हम सबके साथ होते हैं। लेकिन फिर भी उसमें हमारा कल्याण कई बार भविष्य के पर्दे में होता है, तुरंत हमको नहीं समझ में आता, लेकिन बाद में समझ में आता है कि इसमें तो मेरा ये भला था। तो किस किस को कभी ऐसा अनुभव हुआ, तभी हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे ना, जब हमें पूरा निश्चय है कि हाँ जो भी हो रहा है इसमें मेरा कल्याण है। तो जिसको अनुभव हुआ वो हाथ उठा सकते हैं। देखो कितने लोगों का अनुभव है, तो जब इतने का अनुभव है तो सबका भी हो सकता है। हाँ, मानो किसी के पति ने शरीर छोड़ा, फॉर एन एग्जाम्पल, तो दुनिया की नजरों में तो बहुत बुरा हो गया नेचुरली। अब आप अकेले पड़ गए, आपके ऊपर कितनी जिम्मेवारी आ गई। हाँ, परिवार में मानो अगर बच्चे हैं, पूरे परिवार को संभालना है, लेकिन मानो बाबा के ज्ञान, एक तो कई बार ऐसा होता है कि जब जीवन में कोई ऐसी घटना होती है तो ही व्यक्ति भगवान की तरफ आता है ना, इसीलिए भक्ति में कहते हैं बलिहारी दुख की है जो हमें ईश्वर की समीपता में ले आता है। तो ज्ञान को ढूंढते हैं वो, और कई बार इस कारण से ज्ञान में आ जाते हैं, क्योंकि जीवन में ऐसी घटना हुई, बेटे ने शरीर छोड़ दिया अचानक, पति ने शरीर छोड़ दिया, मन इतना अशांत है, तो किसी ने बताया ब्रह्मा कुमारी में जा, तो वो निमित्त बने ज्ञान में लाने के, तो कल्याण हुआ नहीं हुआ। वो आत्मा थी, आत्मा गई, लेकिन उसके उसकी उसमें क्या मिल गए, हमें परमात्मा मिल गए, स्वयं भगवान मिल गया, और बेहद की प्राप्तियों के हम अधिकारी बन गए जो परमात्मा का वर्षा है। तो देखने में बुरा हुआ लेकिन हुआ क्या, और मानो ज्ञान में चलते हैं फिर पति ने शरीर छोड़ दिया तो भी क्या हुआ, अब बंधन मुक्त हो गए। अब ज्यादा समय हम ज्ञान और योग में दे सकते हैं, ज्यादा समय बाबा की सेवा में दे सकते हैं, तो हमारी जो कमाई का समय है वो अब अधिक मिलने लगेगा हमको। तो यूं देखें तो कहते हैं ना, हर बात में दो पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर उसमें हमारा कुछ बुरा होता है तो उसमें हमारा भला भी होता है। तो पर हमारी नजर वो चाहिए कि हम उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। तो कोई भी घटना है, तो जैसे एक बात बताएं, अभी भी जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें एक लेडी थी, सुना होगा आप सबने भी, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो एक लेडी थी, हमने तो अखबार में पढ़ा उसको, तो वो पहुंची, तो फ्लाइट लेट पहुंची, 10 मिनट लेट पहुंची, तो उसको चेक इन नहीं करने दिया कि अब आप चेक इन नहीं कर सकते। बहुत रिक्वेस्ट किया उसने कि ट्रैफिक था या जो भी कारण बना उसका लेट होने का कि मैं नहीं पहुंच पाई, आप मुझे ले लीजिए। उसने कहा नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता, और वो चेक इन नहीं हुई, मतलब आखिर उसको वापस लौटना पड़ा। तो अभी तो वो एयरपोर्ट से निकल कर के टैक्सी में बैठी ही थी, और 5 मिनट ही गई होगी कि उसको पता चला वो प्लेन क्रैश हो गया, क्योंकि तुरंत ही हो गया ना, वो तो टेक ऑफ करते ही तुरंत क्रैश हो गया। तो ऐसे तो वो उसको इतना बुरा लग रहा था, हाँ, कि मेरा टिकट चला गया, क्योंकि अब उसकी गलती से वो नहीं कर पाई चेक इन, तो उसका टिकट अब थोड़ी रिफंड होने वाला है, तो अब उसका इतना, एक तो जाना था उसको, वो नहीं जा पाई, एक तो उसका पैसा गया। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि वो प्लेन क्रैश हो गया, तो क्या हुआ, जिंदगी ज्यादा वैल्यूबल है ना, पैसे की वैल्यू उसके आगे क्या है। तो बुरे में क्या हो गया, कितना बड़ा भला हो गया कि जीवन बच गया। तो ऐसे दो तीन ऐसे मुख्य किस्से जो हुए उस घटना में, जैसे एक व्यक्ति बच गया, हाँ, इतनी बड़ी दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान बची, या कोई भी जहां वो बिल्डिंग पे गिरी वहां भी कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ। तो इसलिए कई बार कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो कहीं ना कहीं हमारा बुरे में भी भला होता ही है अगर हम उसको ज्ञान की दृष्टि से देख सकें, तो हम फुल स्टॉप लगा पाते हैं जो भी हमारे व्यर्थ संकल्प चलने शुरू होते हैं। और फिर तीसरी बात बाबा हमें कहता है नथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं हो रही है, हर 5000 साल में हमने इसे पास किया है। जो भी आत्मा हमारे साथ मानो स्वभाव संस्कार के रूप में भी परीक्षा के रूप में सामने आ जाती है, वो हमारे मन को अशांत करने वाली बन जाती है। तो मेरे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, अब हमें सारे हिसाब किताब यहीं पूरे करने हैं। तो ये हम 5000 साल पहले भी विजयी बने थे और अब भी विजयी बनना ही है। तो बस जैसे ही हमें समझ में आता है कि ये तो हमें पार करना ही है, हमने किया ही था, हमें वो बात कोई बड़ी नहीं लगती है। और उस आत्मा के पार्ट को हम साक्षी होकर के सहज पार कर जाते हैं, यहाँ तक कि उनके प्रति और ही शुभ भावना रखते हुए, रहम दिल बनते हुए, उसको बाबा कहता है कि उसको हम जैसे कहते हैं ना कि सूली से कांटा बना देना, एकदम पहाड़ से उसको राई और राई से रुई का अनुभव हम करते हैं कि जैसे कि कुछ है ही नहीं। फिर बाबा ये भी कहता है हमको कि ये पेपर है हमारा और हम सब पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई में पेपर ना हो ऐसा हो सकता है? तो पेपर तो होंगे ही, तो मुझे पेपर पास करना है, जो भी पेपर आया है मेरे सामने। तो बातें कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती हैं, पहले ये पेपर तो हम पास करें, फिर बड़े पेपर, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे बच्चों के, पहले तो मेरे सामने सब कुछ आता है, तो अगर मैं अनुभवी बनूंगा तो बच्चों को भी मैं सहज उसके लिए गाइड करता हूं कि कैसे बच्चों को ये पेपर पास करने हैं। तो मुझे इस पेपर में पास होना ही है, और पास नहीं होना, पास विद ऑनर होना है। और पास विद ऑनर की निशानी है अचल अटल अडोल एकरस। कोई भी बात अगर मुझे हलचल में नहीं लाती, अचल माना मन संकल्पों की हलचल में आ गया, उसी को तो हम अशांति कहते हैं। तो मन अचल रहा यानी तुरंत परिवर्तन की शक्ति, ज्ञान से हमने तुरंत स्थिति को परिवर्तन कर लिया, फुल स्टॉप लगाने की वही पावर, वो मन की कंट्रोलिंग पावर है, हमारी रूलिंग पावर है, उसको हम यूज करके तुरंत उसे परिवर्तन कर लेते हैं। अब साइंस की जो शक्ति है, जैसे कहा कि दूर की चीज को भी नजदीक अनुभव कराती है, ये साइंस की पावर है। आज हम टीवी देखते हैं, मोबाइल में बात करते हैं, कहाँ व्यक्ति है, कितने माइलों दूर, और हम कैसे बात करते हैं, जैसे सामने ही बात कर रहे हैं। वो टीवी में जो हम दृश्य देखते हैं, ऐसे लगता है जैसे सामने ही सारी एक्ट चल रही है। तो साइंस में ये पावर है कि दूर को भी नजदीक का अनुभव कराती है। तो बाबा कहता है जब साइंस ये अनुभव करा सकती है, तो साइलेंस पावर, हमारी जो शांति की शक्ति है, वो भी दूर बैठी आत्माओं को भी समीपता का अनुभव करा सकती है। यानी अगर हम उनको, अब जैसे उसके लिए क्या चाहिए होता है, कनेक्शन। बिना कनेक्शन के हमारा टीवी या मोबाइल नहीं चलेगा। अगर टावर से कनेक्शन नहीं है तो मोबाइल चलेगा? टीवी का भी लाइट का कनेक्शन नहीं है तो चलेगा? तो यहाँ भी कौन सा कनेक्शन चाहिए, कौन सा कनेक्शन चाहिए? शिव बाबा से कनेक्शन हुआ और हमने अपना शुभ भावना शुभ कामना का स्विच ऑन किया। और जिस आत्मा को भी हम अनुभव कराना चाहते हैं, उस आत्मा को हम दूर बैठे भी समीपता का अनुभव करा सकते हैं, सम्मुख का अनुभव करा सकते हैं। ये शांति की शक्ति का प्रयोग है, जिसको हम मनसा सेवा भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कि शुभ संकल्प की शक्ति इतनी पावरफुल शक्ति है कि वो दूर बैठी आत्माओं को शांति का अनुभव करा सकती है। अगर वो अशांत आत्मा है ना, बाबा कहता है क्रोध अग्नि को भी शीतल कर सकती है, किसी के संस्कारों को भी परिवर्तन कर सकती है। उस आत्मा को हम भगवान का बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। कोई उदास निराश है तो उसको हम उमंग उत्साह में ला सकते हैं, उसे हम हिम्मत दे सकते हैं। आज हम अब बाबा और मम्मा के किस्से सुनते हैं। मम्मा बाबा ने इसका प्रयोग किया। मम्मा का एक मिसाल, जब यज्ञ में की सेवाएं शुरू हुई भारत के अंदर, तो बहुत विरोध होता था, है ना, इतना जल्दी लोग स्वीकार नहीं करते थे, तो कई जगह हंगामे भी होते थे उन अपनी धारणाओं को लेकर। मेन बात पवित्रता की धारणा को लेकर के कई जगह बहुत विद्रोहों के कारण लोग जैसे आ जाते, जैसे ओम मंडली के टाइम में हुआ, तो ऐसे ही मामा जो हैं वो दिल्ली में थे और एक युगल थे, उनमें से माता ज्ञान में आती थी और भाई जो हैं वो अच्छा नहीं मानते थे ब्रह्मा कुमारी इसको, लेकिन वो माता को बहुत लगन थी तो वो किसी भी तरह से सेंटर पर आ जाती थी, और भाई जो है वो बहुत गुस्सा करता था उस बात को लेकर के और बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये जाए सेंटर पर। तो मम्मा जब वहाँ आई तो उसको पता चला कि इनकी जो मेन है वो आई है यहाँ पर, तो उसने कहा, उसने सोचा मन में कि उसको जाकर के मुझे शिकायत करनी है, उस वो कहेगी तो फिर ये नहीं जाएगी। तो ऐसे ही गुस्से में आकर के, जैसे कि हम जाते हैं कि हाँ अपनी बात कहेंगे हम, हाँ ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं और ऐसा क्यों और वैसा क्यों। तो मम्मा तो उस समय ग्राउंड फ्लोर पे तो बहनें थी और मम्मा जो है वो पहली मंजिल पर थी, और वो भाई आया और कहा मुझे उनसे मिलना है आपकी जो, मतलब अब उसको ये तो नहीं पता था कि इनकी मम्मा है वो, लेकिन जो आई हैं उनसे मिलना है मुझे। तो बहनों को पता था उस भाई के बारे में और वो तो कैसे जाने देंगे ना, मम्मा के पास जाके पता नहीं क्या बोल देगा, उल्टा सुल्टा बोलेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो रोकने की कोशिश की उन्होंने कि नहीं, हाँ अभी वो मम्मा जो है वो ऊपर बिजी हैं, जो भी उन्होंने बताया उनका कुछ भी हो मुझे मिलना ही है, आप मुझे रोक नहीं सकते, और उनको हटा के वो चढ़ के ऊपर पहुंच गया। और मम्मा जो है वो अपना साइलेंस में, जैसे मम्मा बैठती थी बाबा की याद में, मम्मा बैठी थी तो मम्मा का स्वरूप इतना शांति का था कि जैसे ही वो गया वहां मम्मा के सामने और मम्मा की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया ना। मम्मा की वो स्वरूप से ही उसको लगा ही नहीं कि मैं ऐसे बोलूं, और वो चुपचाप जाके मम्मा के सामने बैठ गया, मतलब बोल ही नहीं पाया कुछ भी और चुपचाप जाकर के मम्मा के सामने बैठ गया। और मम्मा ने उसको जैसे अपना है कि हाँ दृष्टि देते हैं, मम्मा ने उसको कुछ मिनट दृष्टि दी। फिर मम्मा ने पूछा, जैसे पूछते हैं कि हाँ बच्चे क्यों आए हो, क्या कुछ कहना है, तो उसने कहा कि मम्मा आपको देखकर लगता है अब मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे समझ में आ गया कि क्या पावर है यहाँ पर। तो बस वो मम्मा की दृष्टि और मम्मा के बोल, और उसने उसको भी बदल दिया उस भाई का, कईयों का ऐसे परिवर्तन हुआ उस समय में। तो किसने परिवर्तन किया, जो मम्मा की शांति की शक्ति थी, जो मम्मा की शांत स्वरूप की स्थिति थी, उसने उस अशांत आत्मा को भी एकदम शांति का अनुभव करा दिया। तो बाबा इसको कहता है वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन। हमारी जो अंतिम समय की सेवा है वो कौन सी सेवा है, हम ज्ञान सुना करके लास्ट में सेवा नहीं कर सकेंगे, वाणी की सेवा वो साधन ही काम नहीं करेंगे, या स्थितियां ही ऐसी नहीं होंगी जैसे कोविड के समय लोगों ने अनुभव किया, है ना, चाहते हुए भी हम सेंटर पर नहीं जा सकते थे या हम कोई ऐसी सेवाएं नहीं कर सकते थे। चलो वो तो सोशल मीडिया चल रहा था, तो चलो सोशल मीडिया के द्वारा फिर भी पुरुषार्थ करते रहे, क्लासेस होती रही जो भी, लेकिन अंत समय तो और भी इससे भी बुरी स्थितियां होंगी, तो उस समय हमारी जो सेवा होगी वो यही सेवा होगी कि हम जो वृत्ति से वायुमंडल बनाएंगे या जिस आत्मा को हम जिस भावना से दृष्टि देंगे वैसे ही उसको वो अनुभव हो जाए। तो वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन कैसे होता है ना, इसके ऊपर भी एक ऐसे एग्जाम्पल है जो प्रयोग किया गया कि एक टापू था समुद्र में, एक टापू होते हैं ना छोटे छोटे टापू होते हैं, तो लोग रहते थे वहां पर बहुत जनसंख्या नहीं थी और वो खेती भी करते थे, तो आलू की खेती होती थी वहां पर। और वहां जो बंदर थे टापू पर, बंदर थे वो खेती में से आलू निकालकर खाते थे, तो वो जो आलू होता था वो मिट्टी वाला, नेचुरली जमीन में से निकालेंगे तो मिट्टी वाला आलू होगा, तो मिट्टी वाला ही खाते थे। एक दिन एक बंदर समुद्र के किनारे बैठा था और उसके हाथ में दो तीन आलू थे और एक बड़ी सी लहर आई, तो बड़ी सी लहर आती है तो क्या हुआ, पूरा पानी उसके ऊपर आया और वो आलू धुल गए, मिट्टी निकल गई उसकी। अब उसने वो आलू खाया तो उसको अच्छा लगा, तो उसको समझ में आ गया कि ये मिट्टी निकल गई तो आलू का टेस्ट अच्छा हो गया। तो आगे से उसने क्या किया, वो आलू को जानबूझ के पानी में डालता और फिर मिट्टी निकाल के फिर खाता। और बंदर तो नकलची होते हैं, जब दूसरे बंदरों ने देखा कि ये पानी में डाल के खा रहा है तो उन्होंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। तो उस जो किनारे के बंदर थे सब आलू धो के खाने लगे। अब वो टापू के दूसरे कोने में जो कई माइल दूर था इस कोने से, तो ये देखने में आया कि दूसरे छोर वाले बंदर भी जो हैं वो आलू धोकर खा रहे हैं। तो कैसे हुआ ये, इधर इन्होंने आलू धोके खाया, उसका जो वाइब्रेशन फैला वो दूसरे छोर पे भी पहुंच गया और उन्होंने कैच किया और वो दूसरे छोर वाले भी आलू धोके खाने लग गए। तो ये बाबा हमें कहता है कि जैसी हमारी वृत्ति होगी ना, हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बना लेते हैं तो प्रकृति को थोड़ी हम ज्ञान सुनाते हैं, तो कैसे प्रकृति पावन बनेगी, कैसे प्रकृति सतो प्रधान बनेगी। तो वो जो हम वाइब्रेशन फैला रहे हैं, जो वायुमंडल हम बना रहे हैं, इसीलिए बाबा कहता है कि अपने सेंटर को शांति कुंड बनाओ। कोई आए, आते ही कैसा अनुभव करे, जैसे मधुबन में सब आते हैं क्या अनुभव करते हैं आते ही, कहाँ आ गए। चलो हम तो फिर भी शांति का अनुभव करते हैं तो हमारे लिए ये कॉमन है, लेकिन जो अज्ञानी आते हैं वो तो तुरंत उनको लगता है कि हम तो कोई दूसरी दुनिया में पहुंच गए ना, या ये भी कहते हैं कि हम तो स्वर्ग में आ गए, हाँ, या इतनी शांति हमें, मतलब अपने या अपने स्थान पर तो शांति के लिए हम कितना कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ तो अपने आप ही मन शांत हो गया। तो क्यों, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल अपने आप बना हुआ है, जो भी आत्माएं यहाँ रहती हैं सबकी तपस्या हमारी दादियों ने यहाँ, और खास मधुबन में हम बहुत विशेष अनुभव करते हैं क्योंकि मम्मा बाबा की तपस्या का प्रभाव इस भूमि पर है, तो यहाँ तो और भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। अपने स्थान पर आप शांति का अनुभव करते हैं मेहनत से, हमें योग लगाना पड़ता है, वो स्थिति बनानी पड़ती है तब, लेकिन मधुबन में आते हैं तो मेहनत है, सहज है, सहज हो जाता है क्योंकि पहले से वायुमंडल बना हुआ है। तो इसीलिए स्थान का भी महत्व है, दुनिया में भी लोग मंदिर में क्यों जाते हैं है ना, मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और घर में पूजा करते हैं फर्क पड़ता है ना, क्योंकि मंदिर में जो भी आत्माएं आ रही हैं वो उस भावना से आ रही हैं, उस वृत्ति से आ रही हैं, भगवान के प्रति वो भाव लेकर आते हैं, तो मंदिर का वायुमंडल वैसा ही बना हुआ होता है, तो मंदिर में उनको सहज अनुभव होता है। तो ये बाबा के स्थान का, तो बाबा ने हमें वो विधि बताई है। तो इसके द्वारा जैसे हम दादी जानकी के जीवन की भी एक घटना है कि कैसे दादी में भी इतनी पावर थी कि वो शांति का अनुभव तुरंत करा सकते थे। एक यूरी गेलर मनोवैज्ञानिक थे, ये काफ़ी साल 20-30 साल पहले की बात हो गई, जो पुराने बाबा के बच्चे हैं वो तो जानते हैं इस बात को। तो वो एक ऐसा मनोविज्ञानी था जिसके पास ऐसी पावर थी, जो मनसा शक्ति होती है किसी किसी की बहुत पावरफुल होती है, कि एक थॉट से सिद्धि हो जाती है, जो सोचेंगे वो हो जाएगा, संकल्प की सिद्धि जैसे बोलते हैं। तो वो अगर घड़ी की सुई को कुछ मिनट देख लेगा तो घड़ी बंद, और अगर वो संकल्प करेगा कि घड़ी चले तो घड़ी फिर चल जाएगी। वो कार की चाबी को देख करके अगर थॉट देगा ये मुड़ जाए तो चाबी मुड़ जाएगी, मुड़ जाती थी, मतलब प्रत्यक्ष वो दिखाता था। और ऐसे ही वो मूंग के दाने अपनी हथेली पर रखकर उसको संकल्प से अंकुरित कर देता था, जबकि वो अंकुरित होने में 2 दिन लग जाते हैं। तो वो लंदन गया, जहां अपना सेंटर है लंदन में, ग्लोबल कॉपरेशन हाउस है, दादी जी से मिला। मैंने वो अपने यहाँ भी रिट्रीट होते रहते ना, तो ऐसे उसको किसी कार्यक्रम में बुलाया गया था। तो नेचुरली ये चीजें जो हैं वो लोगों को प्रभावित करती हैं, अच्छा ये कैसे कर लेते हैं, सब तो नहीं कर सकते ऐसा। तो फिर उनका एक प्रोग्राम रखा गया लंदन में, लंदन में एक अल्बर्ट हॉल है, बड़ा हॉल है, तो पब्लिक प्रोग्राम था, बाहर की पब्लिक, अपने तो भाई बहने होते ही हैं। तो दादी जी और वो एक स्टेज पर साथ में बैठे, और उसने अपना सारा शो किया, यही कि उसने कई लोगों को सभा से बुलाया और उनकी कार की चाबी को मोड़ दिया, फिर सीधा भी कर दिया, है ना, और ये भी घड़ी का भी उसने दिखाया। तो लोगों को सचमुच लगा कि हाँ कुछ पावर है। फिर दादी जी ने योग कराया, 15 मिनट दादी जी ने अपना योग का अभ्यास कराया, पिन ड्रॉप साइलेंस। हमारा तो योग अभ्यास ऐसा ही होता है, डायमंड हॉल में भी हजारों लोग होते हैं, बाबा आते थे तभी भी कैसे होता था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। तो एकदम सभा में शांति की लहर जैसे फैल गई, इतना पावरफुल सबको अनुभव हुआ उस समय। फिर उसका अनुभव पूछा तो वो यूरी गेलर ने कहा कि दादी आपने जो अनुभव कराया सचमुच मुझे भी शांति का अनुभव हुआ, और ये शांति दुनिया को चाहिए। जो मैं कर रहा हूं वो तो अल्पकाल का है, माना उससे कोई किसी को प्राप्ति नहीं होने वाली, लेकिन ये शांति का तो मैं भी अनुभव नहीं करा सकता, ये पावर तो मेरे पास भी नहीं है। तो ये हमारे योग की शक्ति है, और वो बाबा हमें चाहता है कि हम जब चाहें उसका प्रयोग करें, चाहे वो हम स्वयं के लिए करें, चाहे हम अन्य आत्माओं के लिए, चाहे जो भी हम आत्माओं की सेवा करते हैं, अलग अलग प्रकार से हम आत्माओं को वाइब्रेशंस देते हैं, सहयोग देते हैं, हमारे संबंध संपर्क में भी किसी को अगर कोई विघ्न है, या हम चाहते हैं कि इसका कुछ परिवर्तन हो, कई बार ज्यादातर हम किसके लिए सेवा कर रहे होते हैं, जो हमारे लिए कोई ना कोई समस्या पैदा करते हैं, तो हम सोचते हैं हम इनको मनसा सहयोग दें, हाँ इनके प्रति शुभ भावना हम रखें ताकि हमारा हिसाब किताब जल्दी खत्म हो जाए। जिस भी तरह से हम उसका प्रयोग करें, यानी शांति की शक्ति का प्रयोग हमें करना है, और ये देखना है कि कहाँ तक हम उसमें सफल होते हैं। तो हमने भी ऐसे बहुत प्रयोग किए अपने जीवन में, जब ऐसा लगता था कि हाँ आवश्यक है, और बाबा ने हमें ये पावर दी है, क्योंकि जो वाइब्रेशन हम फैला सकते हैं वो तो दुनिया में और आत्माएं ये सेवा नहीं कर सकती। तो ऐसे एक दो मैं इवेंट आपको सुनाती हूँ, ऐसे तो बहुत सारे अनुभव है। एक बार यहाँ ही माउंट आबू के लोकल एक परिवार, उसने यहाँ कोर्स किया, यहाँ माउंट आबू के लोकल वाले नहीं आते हैं ज्ञान सुनने के लिए, जैसे कहते हैं ना दिया तले अंधेरा वाली बात है, तो ज्यादातर लोग जो हैं वो हमारे अगेंस्ट हैं, हालांकि ब्रह्मा कुमारी से ही उनको बहुत बिजनेस मिलता है जो भी है, लेकिन फिर भी इतना वो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो परिवार आया, उसने कोर्स किया और मुरली भी सुनने लगे और उनको कुछ 2-3 महीना हो गए मुरली सुनते हुए। दादी जी से भी मिले, उस समय दादी प्रकाशमणि थी, तो उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी तो बाहर पढ़ती थी, बेटा उनके साथ रहता था, बेटा छोटा था। तो जब उसको पता चला कि ये मेरे माता पिता जा रहे हैं, यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जा रहे हैं, फिर उसके फ्रेंड से उसकी बात हुई होगी, तो उसके फ्रेंड्स ने उसको कुछ गलत गलत बातें सुना दी होंगी, तो उसने अपने माँ बाप को कहा कि आप वहाँ मत जाओ ना, आप क्यों जाते हो ब्रह्मा कुमारी में, है ना, ऐसा है ऐसा है। उसने जो भी उसने सुना अपने फ्रेंड से वो माँ बाप को कहा, लेकिन जब उन्होंने खुद ही कोर्स किया था और वो खुद ही अनुभव कर रहे थे, तो बच्चे को उन्होंने समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम ये जो सोच रहे हो गलत है, ऐसा कुछ नहीं, तुम भी आओ हमारे साथ। उसने कहा मैं तो कभी भी नहीं आऊँगा। अब पहले से ही किसी के मन में आप कुछ भर दो संशय की बातें तो दूरी दूरी रहते हैं वो। तो उसने कहा मैं तो कभी नहीं आऊँगा और मैं चाहता हूँ आपको भी नहीं जाना है, आप भी नहीं जाओ, और अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो देखना, ऐसे मतलब थोड़ा जैसे धमकी देते हैं इस तरह से। तो माँ बाप ने सोचा बच्चा है, ऐसे ही सोचेंगे बच्चा है, अब इसको समझ नहीं है इसलिए ऐसा बोलता है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो आते रहे। अब क्या किया उसने, घर से भाग गया वो, और बिना बताए कहाँ चला गया पता नहीं। तो देखा रात घर नहीं आया, कहाँ गया बच्चा, ढूंढा ढूंढा जहाँ भी उसके फ्रेंड्स थे, नहीं है। फिर आखिर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कराई, फिर मेरे को फ़ोन किया क्योंकि मैंने कोर्स कराया था तो मेरे से कनेक्शन था, तो मेरे को बोला कि दीदी ऐसे ऐसे है, और अब तक उन्होंने नहीं बताया था कि हमारा बेटा ऐसे बोलता है, लेकिन अभी उन्होंने मुझे बताया कि बेटे को उन्हें पसंद नहीं आ रहा था कि हम यहाँ आते थे क्लास करने के लिए, तो वो हमें बोल रहा था कुछ दिनों से, पर हमने तो इतना ध्यान नहीं दिया, पर ऐसा कर लेगा ये तो हमने सोचा नहीं, तो अभी क्या करें कैसे करें। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बाबा को याद करो, सब ठीक हो जाएगा, बाबा तो सबको सद्बुद्धि देने वाले हैं। तो मैंने उनको समझाया कि आप योग करो, कैसे बाबा को याद करो। फिर मैंने कहा अच्छा मैं भी योग करूँगी। फिर मैं खास योग लगाने के लिए बैठी उस आत्मा के निमित्त। मैंने कहा वो जहाँ भी है, जो जहाँ भी गया उसको तो पता ही है कि मैं कहाँ हूँ, तो वो अपने माँ बाप को खुद ही बताए कि मैं यहाँ हूँ फोन करके, ताकि ये निश्चिंत हो जाएं। तो फिर ऐसा ही हुआ, थोड़े समय के बाद माना समझो वो अपने मामा के घर चला गया था, जयपुर में उसके मामा रहते थे, तो यहाँ से ट्रेन में बैठा जयपुर चला गया। अब मामा के घर पहुँचा तो बताया होगा उसने अपने परिवार को कि मैं अपने घर में बता करके नहीं आया, ऐसे भाग के आ गया। और फिर साथ में जैसे कि योग लगाते हैं तो वो वाइब्रेशन भी उस आत्मा को पहुँचते हैं। तो फिर उसने फिर फोन किया अपने घर में अपने पेरेंट्स को कि मैं गुस्से में मामा के घर आ गया हूँ, आप मेरी चिंता मत करना, फिर मैं आ जाऊँगा। तो हो गया, क्योंकि उस समय उस आत्मा को थोड़ा जैसे वो गुस्से में था वो शांति की ज़रूरत थी, और हमने थोड़ा उसको वाइब्रेशन दिए, उसको वो शांति का दान दिया, तो उसको समझ में आया कि मुझे ये करना था या नहीं करना था। ऐसे ही किसी की हेल्थ की बात थी, एक टाइम था जैसे अभी कोविड फैला, एक समय था पहले एक स्वाइन फ्लू फैला था उसके पहले, तो वो स्वाइन फ्लू भी ऐसे ही था, किसी के को अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो फिर उसको वेंटिलेटर वगैरह, जिसको भी जैसे इम्यूनिटी कम होती है, कोविड में भी ऐसे ही था, जिसको इम्यूनिटी कम होती है उसको ही वो ज़्यादा असर करता है। तो मेरे नोन थे वो, मना हमारे जैसे क्लोज होते हैं, दूर के रिलेशन के भी, लेकिन जैसे क्लोज हमारा संबंध होता है ऐसे फैमिली थी। तो उनमें उसकी जो युगल थी उसको ये स्वाइन फ्लू हो गया और वो सीरियस हो गई, आईसीयू में थी, वेंटिलेटर पे थी। तो भाई जानते थे, हालांकि वो स्नेही सहयोगी ज्ञान में इतना नहीं चलते, लेकिन मानते हैं बाबा है। और तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि दीदी ऐसे है, कि वो जो बहन है वो वेंटिलेटर पर है और अब क्या सोचते हैं कि हम यहाँ रहते हैं मधुबन में और हम क्योंकि योगी हैं तो भगवान से हमारा कनेक्शन ज्यादा है, तो हम भगवान को कहेंगे तो भगवान ज्यादा सुनेंगे बजाय उनके। माना उनका भाव ये था कि दीदी आप बोलो, माना आप उनके लिए भगवान से कहो कि वो ठीक हो जाएं, क्योंकि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है। डॉक्टर ने बोला हम कुछ भी कह नहीं सकते कि क्या होगा, मतलब ये भी नहीं कहा कि ये बचेंगे, ये भी नहीं कहा कि ये जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अब किसी ने कोई हमको कहेगा तो हम यही कहेंगे नहीं नहीं आप चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप भगवान को याद करो। ऐसे ही मैंने उनको समझाया। फिर मैंने सोचा उसने मेरे को इतनी उम्मीद से बोला है तो मैं ज़रूर उस आत्मा के लिए मैं योग करूं, फिर जो भी उसका ड्रामा होगा, कोशिश तो हमें करना ही चाहिए, तो हम कर सकते हैं। और क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी, यहाँ पर ग्लोबल हॉस्पिटल में, तो मैंने कई मरीजों पर ऐसे किए थे प्रयोग, तो ज़्यादातर प्रयोग वो में मुझे सक्सेस मिली थी। तो मैंने ऐसे ही बाबा को फिर उस आत्मा के निमित्त योग लगाया। तो निस्वार्थ भाव से हम किसी के प्रति भी शुभ संकल्प करते हैं वो उस आत्मा को लगता जरूर है। और ऐसा ही हुआ कि दो चार दिन के अंदर ही उसकी कंडीशन सुधरने लगी और एक हफ्ते के अंदर अंदर तो उसका वेंटिलेटर हट गया। और फिर मैंने तो दो तीन दिन ही योग किया और फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे आईसीयू से बाहर नॉर्मल वार्ड में ले आए और 15 दिन में तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई और वो आज तक भी है। तो ये अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा योग, उस आत्मा के भी अपने कर्म होते हैं, लेकिन मदद उस आत्मा के हिसाब किताब को चुकतू करने में उस समय उसे मदद चाहिए थी, तो वो मदद हमारे शांति की शक्ति से, जो हमारी शुभ भावना की शक्ति है, उससे उसको वो मदद मिल गई और वो आत्मा स्वस्थ हो गई। तो हम दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी हम ये प्रयोग कर सकते हैं। अपने ऊपर भी जैसे एक बार मैंने किया, मेरे को, मैं दो तीन बार ऐसी कंडीशन से गुजरी हूँ जैसे असाध्य स्थिति हम बोलते हैं ना, कि हाँ मतलब अब जैसे एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, बहुत मेजर एक्सीडेंट था। अब जो भी हमारे हिसाब किताब हैं वो किसी ना किसी रूप में हमें चुकतू तो करने ही हैं। तो मैं सेवा से आ रही थी, सेवा में गए थे बाहर और सेवा से आ रही थी, तो गाड़ी में बैठे थे तो नींद आ गई, होता ये थके हुए होते हैं तो नींद आ जाती है, तो नींद आ गई मुझे। और जो साथ में ड्राइवर भाई था उसको भी शायद झपकी लग गई, ज़्यादातर एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं कि अब कोई ना कोई गलती होती है। तो उस समय ही वो एक्सीडेंट हुआ और मेरे को, मैं नींद में थी, मुझे तो पता ही नहीं एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बाबा की याद में थी और मुझे नींद आ गई, ये मुझे याद है। तो कैसे बाबा मदद करता है उस समय और फिर हमारी स्थिति से कैसे वो सूली से कांटा होता है, इसको बाबा कहता है कर्म भोग ना, कैसे वो कर्म बंधन जो है हमारा वो कर्म संबंध में बदलकर हमें पानी की लकीर की तरह, पानी में लकीर क्या होती है ना, या मक्खन से बाल निकलना क्या होता है ना, ऐसा अनुभव हमें वो कराता है। तो ऐसा अनुभव मैंने किया कि इतना मेजर इवेंट और मैं कैसे निकली उससे, तो मैं बाबा की याद में थी और मुझे तो पता ही नहीं एक्सीडेंट हुआ पहली बात। फिर मेरे को हेड इंजरी हुई तो मैं बेहोश हो गई, फिर जब तक लोग हॉस्पिटल में लाए होंगे ये भी नहीं पता मुझे मैं कैसे हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन जब मुझे होश आया तब मैंने देखा मैं अस्पताल में हूँ, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं अस्पताल में कैसे आ गई। फिर मैंने अपने कपड़े देखे तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि कपड़े लाल थे तो नेचुरली सारा ब्लड पड़ा था, तो मुझे समझ में आ गया मेरा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन उस समय जो मेरी सोल कॉन्शियस स्टेज थी, तुरंत मैंने कहा ना एक सेकंड में अगर हमारा ज्ञान काम करता है तो तुरंत मैं वो सोल कॉन्शियस स्टेज में और बाबा ने मुझे वो टचिंग दी, सब ठीक हो जाएगा। और इतना पावरफुल कि मैंने देखा मेरे सामने, क्योंकि मधुबन में रहते हैं तो निश्चित है अगर मेजर कोई घटना हुई है तो सब परिवार हमारे सामने होता है, तो सब जो भी अपने वरिष्ठ थे सब थे वहां पर उस समय, और थोड़ा डर था सबके मन में। वो वाइब्रेशन भी हमें समझ में आते हैं क्योंकि डॉक्टर कोई जवाब नहीं देते जब कोई ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, तो वो कहते हैं हम कुछ नहीं कह सकते, अब कितनी चोट आई है अंदर क्या पता, अभी तो एक डेढ़ घंटा ही हुआ था, तो सिर में क्या लगा है, कितना लगा है, जब तक सारे टेस्ट नहीं हो जाएं। तो मुझे तो भी डर नहीं लग रहा था, और फिर सारा स्कैन वगैरह हुआ, सीटी स्कैन वगैरह हुआ, तो बाबा ने उसमें भी बहुत मदद की कि सारी जो चोट थी वो बाहर बाहर की थी, अंदर कोई भी चोट नहीं थी। और मैं आईसीयू में रही, 3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा उन्होंने, कि तो भी अंदर अगर दिमाग में इतना जोर का झटका लगा है तो कुछ भी हो, तो वो 3 दिन भी बहुत सहज, कैसे मुझे ऐसे लगा था जैसे बाबा ने मुझे अपनी गोदी में रखा है, और कोई दर्द एक सुई की नोक के बराबर भी दर्द हो ना, देखने वालों को लगता है अभी इतनी पट्टियां वट्टियां बंधी हुई हैं, पता नहीं कितना दर्द हो रहा होगा इनको, कितनी तकलीफ, लेकिन मुझे इतना सा भी दर्द की फीलिंग नहीं थी। और एक हफ्ते के अंदर तो मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, और एक महीने के अंदर फिर से मैं अपनी सेवा पर थी। तो देखने वाले को लग रहा था, जो कार का एक्सीडेंट हुआ था, देखने वाले को लग रहा था कि पता नहीं जो इसमें होगा वो बचा है कि नहीं बचा है। तो ये अनुभव बाबा हमें कराता है, जब हमारी वो स्थिति जो बाबा हमें कहते हैं, अगर वो शांति की शक्ति हमारे अंदर जमा है, जमा करने की हमें आवश्यकता है, तो कैसे बढ़ाएं हम उस शांति की शक्ति को, है हमारे पास लेकिन वो जमा होनी चाहिए, तभी वो समय पर एक शस्त्र के रूप में हमारे लिए कार्य करेगी। जैसे साइंस अपना प्रूफ दिखाती है, ऐसे वो भी हमें प्रूफ मिलेगा। तो पहला तो हमें रोज अपना अमृत वेला, जो हम अमृत वेला करते हैं, क्योंकि अमृत वेला वैसे भी साइलेंस का ही समय है, तो उस समय जो हम शांति धाम निवासी बनने का अनुभव करते हैं, शांति धाम है ही शांति का धाम, तो शांति धाम निवासी बनकर मन में वो शांति की शक्ति हम बाबा से अमृत वेले भर लेते हैं, तो सारा दिन फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज ही हमारा वो स्वरूप शांति का रहता है, और जो भी हमारे से मिलेंगे वो भी उसका अनुभव करेंगे। जैसे बाबा कहता है आपके जड़ चित्र हैं आज मंदिरों में, उनके दर्शन करने लोग जाते हैं तो भी क्या अनुभव करते हैं, क्या देते हैं वो जड़ चित्र, क्या अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं ना, सुख का अनुभव कराते हैं। तो इसका मतलब चैतन्य में आपने वो आत्माओं को अनुभव कराया है, वो चरित्र आपके रहे तब तो जड़ चित्र बने हैं। चित्र किसके बने हैं, चरित्र के ही बने ना, हमारे ही तो यादगार हैं वो, तो वो अनुभव हम आत्माओं को करा पाएंगे। जो भी हमारे, जैसे कहा कि साइंस जो है वो गर्मी को सर्दी में बदल देती है, सर्दी को गर्मी में बदल देती है ना, हीटर चलाएंगे तो सर्दी से गर्मी का अनुभव आ जाता है। तो ऐसे ही कोई भी दुख वाली आत्मा है और मेरे संपर्क में आई, तो उसको ऐसा अनुभव हो जाए कि मेरा मन दुखी से सुखी हो गया, मैं खुशी में आ गई, वो खुशी मिल गई मुझे, इनसे बात करके इनसे मिलकर मेरा तो मन ही बदल गया। होता है नहीं होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर सुख है तो हम सुखी देते हैं, हमारे अंदर शांति है तो हम शांति ही देते हैं। अगर मेरा ही मन दुखी है, मेरा ही मन अशांत है, तो मैं क्या देने वाली हूं। तो इसीलिए बाबा में कहते हैं अमृत वेले ही हम अपने आप को बाबा से भरपूर कर लें, वो ईश्वरीय सुख से और वो शांति से, तो सारा दिन वो हमें मदद करेगा। फिर मुरली, जो व्यर्थ संकल्प नेगेटिव संकल्प चलते हैं, इसका मतलब समर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों की कमी है, मन कभी भी उनमें न जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि मुरली से जो हमें समर्थ संकल्प बाबा देता है, जो हमें शुद्ध चिंतन मिलता है, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन बाबा हमें कहते हैं, हम उससे ही बन सकते हैं। तो वो ज्ञान का मनन चिंतन मन में चलता रहे, तब हमारा फुल स्टॉप लगेगा। मन की जो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हमारी तभी बढ़ेगी। और इसके लिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए। आप सोचो कि नहीं उस समय हम कर लेंगे, लेकिन उस समय होता है, दूसरों को हम भले समझा देंगे, अच्छा ये बात हो गई ना, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वही बात मेरे ऊपर आएगी तो दूसरों को ज्ञान सुनाना आसान होता है ना, इसलिए लोग कहते हैं उपदेश करना आसान है, लेकिन वही बात जब मेरे ऊपर आ रही है तब कहेंगे ये तो आपकी बात थी ना। वो एक पंडित की कथा सुनाते हैं ना, दूसरों को कहता था लेकिन जब खुद का समय आया तो ऐसे ऐसे हमें नहीं बनना है। तो वो तभी होगा जब हम रोज ज्ञान, जो बाबा का ज्ञान है उस ज्ञान, इसलिए पढ़ाई का महत्व बाबा हमें अंडरलाइन कराता है कि रोज पढ़ना है, रोज स्मृति स्वरूप बनना है। दादियों को हमने देखा दिन में चार चार बार मुरली पढ़ते थे, इतने समय से मुरली सुनते हुए भी वो मुरली पर इतना ध्यान देते थे। तो आज मुरली में बाबा ने क्या कहा, अगर मुझे स्मृति में है तो स्वतः ही वो मेरे स्वरूप में, क्योंकि स्मृति से स्थिति बनती है, स्मृति नहीं है तो स्थिति भी नहीं होगी। हम भूल गए, मुरली सुनी वहीं की वहीं रह गई, फिर सारे दिन सारी दुनिया की कारोबार में हम लगे हुए हैं। बाबा की एक बात भी पूछेंगे, मुरली बहुत अच्छी थी लेकिन याद नहीं है क्या कहा बाबा ने, तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा, है ना। तो इसीलिए अपनी वो शक्ति बढ़ाने के लिए बाबा कहता है अंतर्मुखता और एकांतवासी बनो, अंतर्मुखता का अभ्यास करो। अंतर्मुखता का अभ्यास यही है कि हम भीतर में अपने जाएं, जिसको बाबा मन का मौन कहता है, मन के मौन का अभ्यास। जितना शुद्ध संकल्प होंगे उतना कम चलेंगे, जितना व्यर्थ संकल्प होंगे उतना फास्ट चलेंगे और ज्यादा चलेंगे। तो शुद्ध संकल्पों के रमण में मन जाए, मन का मौन ये है। और फिर मुख का मौन भी हम दिन में कुछ समय जरूर रखें, सुबह 4 से 8 का समय हमारा अपना समय होता है। पहले तो यज्ञ में एक दिन हफ्ते में होता था जब पूरा दिन मौन रखना होता था, लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है। भट्टी में भी आपको मौन रखने के लिए बोलते हैं तो रख पाते हैं, नहीं रख पाते, नहीं रख पाते, है ना, मेजॉरिटी नहीं रख पाते। आप में से कौन है जो अभी 3 दिन भट्टी कर रहे हैं लेकिन फुल मौन में है? हाँ उठाइए हाथ, 2 तो इधर है, 1 उधर है, 4, अब बताइए। हाँ 200 भाई बहनों में कितने लोग मौन में हैं? तो मौन रहना हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है, और कईयों को तो ऐसे लगता है चुप रहना है माना सजा मिल गई। और वहां विपस्सना, दुनिया में भी जो विपस्सना करने जाते हैं ना, 10-10 दिन उनको मौन कराते हैं, वो बिल्कुल बात नहीं कर, उनका तो मोबाइल भी जमा कर देते हैं वो। यहाँ तो बाबा फिर भी छूट देता है हमको, सहज राजयोग है ना, सारे मोबाइल पकड़ के रहते हैं हम कोई आपको कोई बंधन में नहीं डालता, अपने हिसाब से हमें जो करना है। लेकिन ये चीजें माना, जब हम वो साइलेंस का अनुभव करते हैं, शुरू में हमें लग सकता है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब उसका सुख मिलता है, एक हमारा गीत बना हुआ है ना, मौन की भाषा जो समझे अंदर का सुख वो पाता है, तो वो जो सुख मिलता है फिर हम अपने आप ही ढूंढते हैं कि कब हम ऐसा मौन रखें और कब हम ऐसा अनुभव करें। तो जब बाबा हमें इतना वंडरफुल चांस देता है, यहाँ मधुबन में हम आते हैं भट्टी करने के लिए, कोई धंधा कारोबार तो है नहीं, कोई प्रवृत्ति तो है नहीं, तो रख सकते हैं ना, फिर तो क्यों नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो अनुभव करना चाहिए वो, कि वो शांति की शक्ति क्या है। जब हम मुख का भी मौन, मन से भी शांत हैं, मुख से भी हम शांत हैं, और सिर्फ हमारा कनेक्शन एक बाबा के साथ है, बाकी पूरा देह और देह की दुनिया से हमारा कनेक्शन खत्म। फिर एकांतवासी बनना माना एक के अंत में चले जाना। फिर बाहर दुनिया में कितना भी शोर शराबा है, हो सकता है क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं तो हम हमारे आसपास बहुत अशांति वाली बातें हो सकती हैं, लेकिन उसमें रहते हुए भी मन एक के अंत में चला जाए तो भी हम शांति का अनुभव करेंगे। भले बाहर के वातावरण में कितना भी शोर अशांति है, लेकिन उसमें भी मैं शांत हूं तब मैं शांति फैला पाऊंगी, शांति का वाइब्रेशन तभी फैलेगा। तो एकांतवासी स्थिति का अनुभव ऐसी स्थितियों में करने का अभ्यास हमारा होना चाहिए, और एकाग्रता का अभ्यास एक शुद्ध संकल्प में मन स्थित हो जाए, और जितना समय हम मन को स्थित करना चाहे उतना समय हमारा मन उस स्थिति में स्थित हो जाए, जिसमें बाबा कहता है अशरीरी स्थिति, बीज रूप स्थिति, हम जितना समय बनाना चाहे। अगर मैं सोचूं 10 मिनट मेरी बीज रूप स्थिति हो तो 10 मिनट मैं हिलूं नहीं परम धाम से, तब हमारी वो शक्ति जमा होगी, शुद्ध संकल्प की शक्ति तभी जमा होगी ना। लेकिन होता क्या है, एक मिनट ऊपर एक मिनट नीचे, एक मिनट ऊपर एक मिनट नीचे। लेकिन जो स्थिति में स्थित होना है, इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल क्यों बनाया, अचानक जो भी हम कर रहे हैं उससे अपना ध्यान हटा करके हम बाबा की याद में मन को एकाग्र कर लें। या एक एक घंटे में हम जो ट्रैफिक कंट्रोल देखते हैं मधुबन में, बाबा ने कहा था हर घंटे में एक मिनट भी दो मिनट भी अशरीरी स्थिति का अनुभव करो, जब चाहे मैं आवाज में हो आ जाऊं, जब चाहे मैं आवाज से परे चले जाऊं। तो ये हमारी कंट्रोलिंग पावर है ना, प्रकृति का जब चाहे हम आधार लें, जब चाहे हम न्यारे हो जाएं, तो प्रकृति के भी हम मालिक हैं। तो ये अभ्यास हम करेंगे तो हमारी शांति की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और जैसे समय प्रमाण हर दिन हम वाचा सेवा करते हैं, कर्मणा सेवा करते हैं, ऐसे ही हमें मनसा सेवा भी करनी है, ये भी लक्ष्य हमारा होना चाहिए। तीनों सेवा बराबर चाहिए, तीनों के बराबर मार्क्स हैं। तो जब भी हम योग करते हैं हमें ये वाइब्रेशन फैलाने की सेवा भी करनी है, विश्व की आत्माओं के प्रति या जो भी स्थान के प्रति कोई विघ्न है उसके प्रति, जो भी हम समझते हैं जो हमारी सेवा की जरूरत है जिस भी आत्मा के प्रति, वो हम शुभ भावना के, शांति के, शक्ति के, पवित्रता के वाइब्रेशन हमें रोज फैलाने हैं। तो बाबा ने हमें विश्व कल्याणकारी बनाए, विश्व सेवाधारी बनाए, तो ये हमारा कर्तव्य है। तो जब हम ये करेंगे तो अपने आप ही हमारी शांति की शक्ति बढ़ती जाएगी और समय पर हम उसका प्रयोग करके सफल हो जाएंगे। ओम शांति। अभी योग का समय है। सागर की संतान शांत स्वरूप हूं। की दुनिया स्थापन करने के निमित्त बनाया है। मैं शांति दूत हूँ, शांति का अवतार हूँ। मेरे द्वारा चारों ओर शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। बाबा की याद से मैं समस्त विश्व की आत्माओं को शांति का दान दे रही हूँ। मैं बाबा के साथ विश्व के ग्लोब पर हूँ। आज दुनिया में कितने युद्ध चल रहे हैं, वहां की आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं। बाबा मेरे द्वारा आत्माओं को शांति और शक्ति अनुभव करा रहे हैं। ये दुनिया के परिवर्तन का समय है और अब शांति की दुनिया आने वाली है। ये संसार सदा के लिए दुख और अशांति से मुक्त हो जाएगा। बाबा मुझे शांति धाम और सुख धाम ले जाने के लिए आए हैं। परम धाम में मैं बाबा के साथ बहुत स्वीट साइलेंस का अनुभव कर रही हूं। सुखमय शांति मुझमें समाती जा रही है। सिर्फ शांति, गहन शांति। मन सब विचारों से परे एक बाबा की याद में मगन है। मैं शांति की शक्ति से भरपूर हो गई हूँ।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय सविता बहन जी का। एक हाथ की ताली से धन्यवाद करेंगे।